हमारे बीच, हमारे इस यज्ञ के इतिहास को नित्य नई बुलंदी देने वाले आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी मौजूद, जो बाप दादा के दिल तक से लेकर हिंदुस्तान के दिल तक, दिल्ली से यहाँ हमारे बीच पहुंचे हैं। आपने जीवन के अंदर स्वयं साकार बाप दादा से जो पाठ त्याग तपस्या के पढ़े, 1954 में ज्ञान के सानिध्य में और 1955 में आपने चार्टर अकाउंटेंट का वो पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, और उसके बाद जीवन से पलायन नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की चुनौती को स्वीकार किया। आप बहुत बड़े फॉर्म में, जिसको हम कृषि अनुसंधान माना इफको की तरह क्रिपको जानते हैं, उसमें आप प्रबंधक रहे, महाप्रबंधक रहे, और फिर वहां की वो सब गतिविधियां उस आध्यात्मिक मन को रास नहीं आई, क्योंकि ज्ञान में तो बचपन से ही भाई साहब आ गए थे, और उसके बाद बाबा ने पूरी तरह आपको समर्पित करा लिया। आपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक अपनी सेवाएं दी। आज वैश्विक सेवाओं के केंद्र बिंदु हैं। बाबा की हर आस को पूरा करने के लिए कि हर एक तक बाबा का ये ज्ञान पहुंचे, आपने अपनी प्रखर लेखनी का उपयोग किया, और ऐसा उपयोग किया कि साप्ताहिक पाठ्यक्रम लोगों को घर बैठे बैठे पत्राचार के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में पहुंचने लगे, एक नई धारा खोली। फिर आपने इंग्लिश का जो प्योरिटी हम सब देखते हैं, आज पूरे विश्व के मंच पर पूरी आभा के साथ पढ़ा जाता है, आप उसके भी मुख्य संपादक हैं। जो देश के रहनुमा हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उस राजनीति प्रभाग के आप अध्यक्ष हैं। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक सचिव कहें, सेक्रेटरी जनरल कहें, माना विभिन्न पदों पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन में आपका हाथ है। आप आचरण के, आप आगत और विगत में समन्वय करने वाले ऐसे पुरोधा हैं। कितनी ही गंभीर से गंभीर बात हो, लेकिन मन की, चेहरे की कभी खुशी नहीं जाने देते, हंसते हंसाते हर मंजिल को पार करते रहते हैं। आदरणीय भ्राता जी हमारे मध्य उपस्थित है, मैं अगर महिमा करती रहूंगी तो आपके बीच में और अपने बीच में समय लेती रहूंगी। आज आप हमें बताने आए हैं कि आने वाले समय के लिए हम अपनी आध्यात्मिक तैयारियों को कैसे करें। आप उनकी प्रतिभा को ज्ञान सरोवर की आर्ट गैलरी में देख सकते हैं, आप ORC के डायरेक्टर हैं, वहां की आर्ट प्लाजा में भी आप देखेंगे हर जगह के म्यूजियम से एक अनोखी छवि अपने आप में ज्ञान और कला की समाई हुई है। तो भाई साहब को बाबा ने बहुत फुर्सत से श्रृंगार किया है, आज हमारे बीच हम सबका श्रृंगार करने एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। आज हम सब भाई बहन देश के कोने कोने से बाबा के घर, जिसको कहते हैं आबू के अब्बा के घर, इकट्ठे हुए हैं। किस विशेष उम्मीद से इकट्ठे हुए हैं कि हम कल बाबा मिलन करेंगे, और आज सुबह से ही भले सभी क्लास आदि कर रहे हैं, लेकिन हम सब का ध्यान किस घड़ी के इंतजार में है कि कल वो समय आएगा जब हम सब मिल करके बाबा मिलन करेंगे। तो सबके अंदर बहुत ही हर्ष, उमंग, उत्साह उनके चेहरों से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो जो प्यारे बाबा के बच्चे अपने घर प्यारे बाबा के घर इस कल्प में पहली बार आए हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम, वो जरा कृपया हाथ उठाएंगे। मेरे ख्याल में 60% है, तो अपने 60% बाबा के प्यारे बच्चों को, जिसको हम कह सकते हैं छोटे भाई बहनों को, अपने परिवार में पहली बार सम्मिलित देखकर हम सब क्या करेंगे, जो पहली बार आए हैं वो अपने लिए और जो उनको देख रहे हैं सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि ताली बजाना खुशी की निशानी है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब यात्रा पर हैं, कोई शारीरिक यात्रा पर तो नहीं है जो यात्रा करके वापस आ जाएं। शारीरिक यात्राएं कितनी भी लंबी हों, आप चार धाम की यात्रा करने चले जाएं तो भी क्या होगा, घूम फिर कर फिर क्या कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने घर में वापस आ जाएंगे। फिर कुछ समय बाद कईयों को मंग होता है दूसरी यात्रा करके आओ, लेकिन बाबा कहते हैं ये यात्राएं किसी एक असली यात्रा की यादगार हैं। दुनिया वाले भगत जन, संत महात्मा चार धाम का चक्कर लगाते हैं और हम क्या करते हैं, हम चार युगों के सृष्टि चक्कर अर्थात सौ दर्शन चक्कर को घर बैठे घुमा लेते हैं, तो हमारे चार धाम तो रोजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन से विषय पर बात करने जा रहे हैं कि यात्रा हमेशा किसी लक्ष्य से की जाती है। जो व्यक्ति किसी लक्ष्य से यात्रा नहीं करता वो क्या करता है? सामान्य भाषा में कहा जाता है वो आवारा गर्दी करता है, इधर उधर घूम के, जैसे कोल्लू का बैल होता है सारा दिन घूमता रहता वहीं का वहीं। तो यात्रा का हमेशा लक्ष्य होता है कि यहां से जाना है और वहां पर पहुंचना है। इसको सरल भाषा में कहें कि ये यात्रा इस पार से उस पार की है। ठीक है, अर्थात इस पुरानी दुख की, तमोगुणी अशांति की, अकाल मृत्यु की, कितनी रोग शोक की, चिंता की, भय की, जितने भी नाम ले लो आप सब जानते हैं, इस दुनिया से लंगर उठा के और हमको अब जाना है उस दुनिया में उस पार, यानी जहां पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी दुख की बात तो क्या, सपने में भी किसी को अशांति, दुख, चिंता, भय नहीं होगा, जहां सब चैन की बंसी बजाएंगे और उसके यादगार रूप में श्री कृष्ण जी को सृष्टि के ग्लोब पर आराम से बैठे हुए बंसी बजाते हुए दिखाया गया। क्योंकि बंसरी तो चैन से ही बज सकती है, कोई अस्पताल जा रहा हो, अशांत हो, शमशान घाट किसी को ले जा रहा हो, बंसरी तो नहीं बजाएगा। तो उस दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों ने लंगर उठा लिया, अर्थात यहां से पीठ कर ली। अब हमारा मुख किधर है? हमारा मुख किधर है? नई दुनिया की तरफ है। ऐसे तो नहीं कि नई दुनिया की तरफ जाते हैं, पीछे से आवाज आती है रुक जाओ ठहर जाओ, और आप मुड़ मुड़ कर वापस देखते रहते हैं। हैं? ऐसा तो नहीं है ना, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, कि वापस देखते रहोगे तो वहीं रह जाओगे। तो अब एक बारी पीठ कर ली तो कर ली। ब्रह्मा बाबा एक खिलौना दिखाया करते थे जिसके अंदर क्या था, सीता जी थी, एक एक उसके एक हिस्से में जो अलग था सीता जी थी, और दूसरे में जो थोड़े फासले पर था एक तरफ राम जी का चित्र था, दूसरी तरफ रावण का चित्र था। तो उस खिलौने में, आजकल भी शायद मिलता होगा, उस खिलौने में जो ही श्री राम का चित्र सामने आता था तो सीता नीचे मैग्नेट लगा हुआ था, अपने आप उनका मुंह उस तरफ हो जाता था राम जी की तरफ, और जब उसको चेंज करके रावण का चित्र लाओ तो सीता फौरन पीठ कर लेती। तो कहने का भाव यह है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसीलिए कोई कहे कि मैं दोनों हाथ में लड्डू रखूं, हो नहीं सकता। दो घर का मेहमान का क्या हाल होता है? दो घर का मेहमान भूखा रहता है, क्योंकि उसको ना माया मिलती है ना राम मिलता है, बीच में लटक जाता है दर्शंकु की तरह। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को ये बहुत प्यारी मन की बुद्धि की यात्रा सिखा दी कि रहो यहां लेकिन पूरी तैयारी रखो वहां की, और अपना लंगर उठा लो, बोरी बिस्तर तैयार रखो, बैग एंड बैगेज एवर रेडी रखो, ताकि जब आपका टर्न आए आप यहां से फौरन वहां पहुंच जाओ, कोई चीज आपको खींचे नहीं, बंधन में नहीं बांधे। अच्छा, आप देखते हैं कि एक देश का राजदूत दूसरे देश में जाता है, जैसे हमारे देश में 100 से भी अधिक देशों के राजदूत दिल्ली में निवास करते हैं। वो राजदूत 5 साल के लिए रहते हैं, कई बार उनका 10 साल का भी रहना हो जाता है, और वो थोड़ी बहुत भारत की भाषा सीख लेते हैं। कोई किसी देश का राजदूत, मान लो इटली का राजदूत आपको नमस्ते करे, आपको कितनी खुशी होती है, देखो हमारी भाषा में बोल रहा है, नमस्ते करना सीख लेते हैं। उनके बच्चे भारत में ही पढ़ते हैं स्कूलों में, हर प्रकार से मतलब वो भारत में रह रहे हैं 5 साल के लिए, लेकिन उनका बुद्धि कहाँ रहती है? 5 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता, उनकी बुद्धि 5 साल अपने देश की तरफ रहती है, घूमते फिरते खाते सोते चलते फिरते वो यहां है, लेकिन उनके मन में कहां का हित रहता है अपने देश का। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बहुत आसान है, मैंने आप बच्चों से घर नहीं छुड़वाया, बिजनेस नहीं छुड़वाया, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं छुड़वाया, लेकिन केवल आपको कहा कि जैसे राजदूत यहां रहते हुए वहां का सोचता है कि आखिर तो मुझे वहां जाना है। इसी प्रकार से बाबा ने हमसे क्या करवाया, जिसको भगवानों वाच की भगवत गीता में क्या कहा गया है, मन मना भव या माम एकम शरणम व्रज, कि परमात्मा कह रहे हैं बच्चे यहां ही रहो लेकिन मन को मेरे से लगाए रखो, और अन्य तरफ से विराग वृत्ति रखो, बुद्धि को हटाओ कर मेरी से ही कनेक्ट रहो। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और हमारा बहुत एक सुंदर सा गीत भी है जो सब भाई बहन गाते हैं, वो क्या है, मेरा तो कौन, मेरा तो शिव बाबा एक। जो इस गीत को धारण किए हुए हैं, सचमुच जिन्होंने सोच लिया है इस दुनिया में कोई सार नहीं है, ये असार संसार है, झूठी दुनिया है, झूठी माया झूठी काया है, और हमारा तो एक शिव बाबा ही है, वो जरा अपना दायां हाथ उठाएंगे और ताकत से जल्दी से उठाएंगे, सोच समझ कर नहीं। देखो कई कई तो बेचारे सोचते रह जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, लेकिन 80% ने हाथ उठाया, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं आप नहीं देख रहे, तो 80% भाई बहनों ने हाथ उठाया है, बाकी भी जब अटेंशन रखेंगे तो सारे ही उठा देंगे। क्या कि हमारा है ही कौन आखिर, जब दुख होता है विपदा आती है भगवान की तरफ ही तो ध्यान करते हैं सब, जब हर चीज फेल हो जाती है, हर तरीका ट्राई किया जा चुकता है, फिर डॉक्टर भी कह देते हैं भी अब तो भगवान के भरोसे है, वो कुछ मिरेकल कर दे, कुछ करिश्मा कर दे तो हो सकता है। तो बाबा कहते हैं एक होता है बिल बना के नीचे GST लगाना, और एक होता है पहले बाबा बाकी चीजें बाद में। तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट में जो बाबा के पास जाना है, पहले ही क्यों नहीं बाबा को याद रखो। हम भक्ति में भी क्या कहते थे, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, परमात्मा को सुख में कोई याद नहीं करता दुख में करता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या है, जो सुख में सिमरन करे उसे दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सब ने गीत के पहली लाइन में तो हाथ उठा दिया, मेरा तो एक शिव बाबा ही है, जैसे गीता में है माम एकम शरणम व्रज। लेकिन उसकी पहली लाइन क्या है, सर्वधर्मान परित्यज, अन्य तरफ से बुद्धि योग को हटाओगे तभी मेरी तरफ लगाओगे। आपका मुंह और पीठ इकट्ठे नहीं हो सकते या बार बार घुमाते रहो, तो आपको अपना मुख किधर करना है। तो बाबा कहते हैं गीत की दूसरी लाइन क्या है, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरी लाइन क्या है, दूसरा ना कोई। अब अगर हम आपको कहें कि दूसरा ना कोई में भी हाथ उठाओ तो 80% रिजल्ट नहीं आएगा। शिव बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे, है ना वंडरफुल बात। क्यों, शिव बाबा तो निराकार है और दूसरे साकार हैं। आज मैं हॉस्पिटल में दाखिल ले जाऊं तो मुझे तो पता नहीं लगेगा शिव बाबा मेरे साथ है, पर मेरा भतीजा भांजा कोई मेरे को रोटी लेके आएगा जूस लेके आएगा तो दिखेगा ना। इसलिए दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। तो बाबा कहता है जब आप किनारा छोड़ते हो इस पार का, तो थोड़ी देर तक हरेक को पुरानी चीजें याद रहती हैं। हमने भी जब 1973 में अपनी जॉब से रिजाइन किया तो बहुत सारे हमारे जो काम करने वाले थे वो बोले हमें भूलना नहीं, पांच छह महीने तक उनकी चिट्ठियां भी आती रहीं, लेकिन धीरे धीरे खत्म। अच्छा, आप भी, आपकी मान लो बदली हो जाए सारी, यहां से बॉम्बे में हो जाए, तो अब क्या करेंगे आप? तो बॉम्बे का ज्यादा सोचना शुरू करेंगे, वहां घर कैसा रखेंगे, सामान कौन सा ले जाएंगे, और यहां का भूलना शुरू करेंगे। बल्कि यहां की मोटी मोटी चीजें आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे कि वहां जाके नहीं लेंगे, इसको कौन उठाएगा। इसलिए हमें बुद्धि को एक तरफ रखना है, और सभी को पता है हम यात्री हैं। हम सब रूहानी यात्री हैं या नहीं? जो रूहानी यात्री हैं फिर से अपना दाया हाथ उठाइए। हम सब क्या हैं? रूहानी यात्री। अब दूसरी बात आती है कि हमारी यात्रा कितनी पूरी हो चुकी है। जिस परीक्षा को हम दे रहे हैं उसमें पूरा होने में उसका टाइम कितना बचा है जिसमें हमने उस परीक्षा को पूरा करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब एग्जामिनर कह देता है टाइम इज ओवर, स्टॉप राइटिंग, तो उनका फिर भी कुछ ना कुछ लिखना बचा रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तो यही हमारा आज का विषय है कि हम अपनी भविष्य की तैयारी कितनी कर रहे हैं, कितनी बाकी है, उस पर हम आज आपस में बैठकर थोड़ा मनन चिंतन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, अपने बारे में सोचने के लिए कम टाइम मिलता है। हम दूसरों की शक्ल सारा टाइम देखते रहते हैं, लेकिन अगर अपनी शक्ल देखनी हो तो शीशे के सामने जाना पड़ता। तो इसी प्रकार से आज हमें मौका मिला है, जैसे फैशनेबल लोग होते हैं ना, जेब में ही कांच रखते हैं, निकाल के थोड़ा अपना मेकअप करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेकअप के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी कमी को छुपाना कि मेरे यहां दाग है, मैं यहां पाउडर लगा लूं, और मेकअप का दूसरा मतलब होता है अगर ट्रेन लेट हो रही हो, यात्री पूरे स्पीड पे ना चल रहा हो, तो उसको कहते हैं जरा स्पीड बढ़ाओ ताकि मेकअप करके तुम समय पर पहुंच जाओ। तो हम दूसरी प्रकार के मेकअप की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, आपको पता है ना हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? बहुत थोड़े सब्जेक्ट हैं। दुनिया के अंदर तो आप जाओ तो प्राइमरी स्कूल में भी अनेक सब्जेक्ट लग गए हैं। बच्चा किताबों के बोझ से झुक के चलता है। बाबा ने कहा मेरे स्टूडेंट तो बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े भाई हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो अपने आप को भी नहीं ठीक तरह संभाल सकते, उनको इतने सब्जेक्ट क्यों दूं? तो बाबा ने सिंपल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और उसके लिए कोई कॉपी पेंसिल ज्यादा रखने की भी जरूरत नहीं है, दिल के अंदर ही रखते हैं। ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, अर्थात मुरली, अर्थात श्रीमद्। दूसरा है योग, कि भी ज्ञान तो मिल गया लेकिन उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं मुझे प्यार से याद करोगे तो मेरे से अथाह शक्ति ले सकते हो। तीसरा है ज्ञान और योग के आधार पर बनना क्या है। ज्ञान है इसको छोड़ना है, इसको अपनाना है, अर्थात दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुण मैंने खुशबूदार फूल, दैवी गुणों की खुशबू अपने जीवन में लानी है। और चौथा है कि गुरु दक्षिणा देना कि भाई तुमको ज्ञान भी दिया, योग भी दिया, धारणा भी कराई, गुरु दक्षिणा में हमारा कल्याण है, जितनों की सेवा कर लोगे उतने सतयुग में तुम्हारे साथी संगी प्रजा के रूप में वहां आ जाएंगे, और द्वापर में भगत के रूप में आ जाएंगे। फायदा ही फायदा है, हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें नुकसान नहीं है, ठीक है ना? ज्ञान दूसरे को बांटोगे आपका कम नहीं होगा, योग जितना लगा लो आपके ऊपर है, जितनी मर्जी शक्ति धारण कर लो। खुशबूदार फूल को कोई सूंघेगा तो उसकी खुशबू घटेगी नहीं, तो इसलिए बाबा कहता है दैवी गुणों भी फैलते ही हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं है। और सेवा का तो कहते ही आप सब जानते हैं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट हमको सेवा का लगता है, कर सेवा खा मेवा, जो ही सेवा की तुरंत आपकी खुशी बढ़ी। अच्छा, अब इन चारों सब्जेक्ट से हमें क्या कुछ करने को मिलता है, वो बाबा कहते हैं हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्वचिंतन अपने लिए, दूसरा है अपने संगी साथियों के लिए जिनसे आपका संबंध संपर्क रहता है शुभ चिंतन, और जो दूसरे है बाकी है आत्माएं उसके लिए हमारा काम है विश्व परिवर्तन। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन और विश्व परिवर्तन, अगर आप गौर से देखेंगे तो हम तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे पर थोड़ा सा कम देते हैं, और सबसे कम ध्यान हम पहले सब्जेक्ट पर देते हैं। अर्थात विश्व परिवर्तन के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए किसी भी बीके को कह दोगे तो दिन रात एक कर देगा, उसको थकावट भी नहीं होगी, क्या भोजन तो कर ले, नहीं नहीं मुझे सेवा पर जाना है, क्योंकि तुरंत खुशी मिल रही है, प्रत्यक्ष फल है। और दूसरा कि हम बाबा हमको रोज ज्ञान देते हैं कि देखो शुभ चिंतन ही तुम्हारे मन को प्रफुल्लित रखेगा, और जो तुम्हारे संगी साथी हैं वो संतुष्ट रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहोगे, उसका हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन जो पहला सब्जेक्ट है सोच चिंतन, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि पहले पर ही बाकी दो का आधार है, जितना हम सोच चिंतन करेंगे उतना सो परिवर्तन करेंगे, और उस सो परिवर्तन के आधार पर ही हम शुभ चिंतन करेंगे और विश्व सेवा करेंगे। तो आज का विषय क्या हुआ, सो चिंतन। अच्छा, अब बाबा कहते हैं हम देखा जाए तो हम और कामों में बिजी रहते हैं, लौकिक में बिजी हैं, अपने हिसाब किताबों में बिजी हैं, दूसरों की सेवा में बिजी हैं, और इस बिजीनेस में हम सोच चिंतन कब करते हैं, या तो अमृत वेले योग लगाते हैं, तो बाबा ने कह रखा कि योग के समय आपको संकल्प नहीं चलाने, लेकिन फिर भी चलाते हैं, अपना सोचते हैं, मुरली आती है तो मुरली के जो वचन होते हैं महावाक्य उसमें सोच चिंतन की बात होती है, तो टेम्परेरीली करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम सोच चिंतन कब करते हैं, आप देखेंगे जब कोई समय हमको अलार्म लगाता है, मान लो पांच चार जगह अर्थक्वेक आ जाए, या बहुत जगह ही पानी भर जाए समुन्द्र का, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ब्रह्मा ब्राह्मण को सोच चिंतन याद आता है, अरे भाई हैं, मैं कहाँ हूँ, समय आ रहा है, अलार्म बजता है तो थोड़ा उमंग गुस्सा आता है कि भाई और सब छोड़ो, सोच चिंतन करो, अपना सोचो। लेकिन एक तो समय कराता है, दूसरा जब कोई विघ्न आ जाता है, कोई परिस्थिति आ जाती है, तो परीक्षा आ जाती है, उस समय हम सोचते हैं अरे अपनी शक्ति तो पूरी आई नहीं, मैं इस चीज के अधीन हो रहा हूं, इससे युद्ध करना पड़ रहा है, तो उस समय भी सोच चिंतन होता है। या हमारे किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट निकलता है, बाबा कहता है मीठा बोलो, किसी का निरादर ना करो, गलती से हम अलबेले होकर कुछ उल्टा बोल देते हैं और दूसरा हमको शिक्षा दे देता है। यहाँ तो बच्चे भी शिक्षा दे देते हैं। माता पिता घर में आके मान लो क्रोध करते हैं तो जो क्लास में बच्चे आते हैं वो क्या कहते हैं, मम्मी डैडी गुस्सा नहीं करना। अब माता पिता को शर्म आती है कि देखो हमारे बच्चे ही हमें सिखा रहे हैं। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में जब हमें धक्का लगता है उस समय हम सोच चिंतन करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बाबा कहता है ये इस प्रकार की परिस्थितियां हमें सोच चिंतन करवाएं तो उसका फल किसको मिलेगा है? अगर कलयुग बदलकर सतयुग आ जाए और हम कहें कलयुग बदला सतयुग आ गया तो उसका फल तो युग को मिलेगा ना, मुझे थोड़ी मिलेगा, मैं थोड़ी सतयुग में आ जाऊंगा, चीजें सतों प्रदान हो जाएंगी। इसलिए ऐसा सोच चिंतन अल्पकालिक होता है, उमंग गुस्सा आता है लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहता, फिर नॉर्मल हो जाते हैं और फिर जब कोई परिस्थिति आती है तो सोच चिंतन होता। अब आप देखिए अपने सामने सीन लाइए कि हमारी यात्रा पूरी होने में कितना समय बाकी है। तो जब किसी को काम ज्यादा करना हो और समय थोड़ा हो तो चिंतन जो है वो चिंता का रूप ले लेता है, चिंता लग जाती है। आप नॉर्मली पूरे टाइम से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लेट हो जाएं किसी भी कारण से तो आपको चिंता लग जाती है। तो इस समय आप बताइए कि संगम का ये समय चिंतन करने का है या चिंता उसको चिंता का रूप देने का है, क्या ख्याल है? हमें तो चिंता लग जानी चाहिए, जिसको कहते हैं इमरजेंसी लग जानी चाहिए। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है ना कि कब क्या हो जाए, तो वो जनरल वार्ड नहीं होता, उसमें हर वक्त 24 घंटे खुला रहता है। तो आज की दुनिया का क्या हाल है, सतयुग में हर चीज, सतयुग कहते किसको है, सतयुग में हर चीज ठीक समय पर ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती है, अकाल मृत्यु नहीं होगा। और कलयुग में क्या होता है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप आराम से बैठे हैं, अगली घड़ी क्या हो जाए मुझे या इस सारे दुनिया को पता नहीं। तो ये इमरजेंसी हुई या नहीं हुई, तो हम जैसे मिलिट्री वाले होते हैं या फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो खाते हैं सोते हैं लेकिन उनका सारा अटेंशन रहता है कि अचानक कोई घटना हो तो हमें देर ना लगे। तो जिसको बाबा कहते हैं एवर रेडी, अब रेडी का भी टाइम नहीं है, एवर रेडी कंप्लीटली रेडी, तो इसको कहते हैं चिंता। अच्छा, अब चिंता को तो कहा जाता है चिता के समान है, लेकिन बाबा कहता नहीं, जैसे वो शुभ चिंतन था ऐसे शुभ चिंता, ऐसी चिंता भी होती है जो आपको अन्य चिंताओं से मुक्त करती है। जैसे हमको बाबा कहते हैं कि एक बंधन बांध लो तो आपके सारे बंधन छूट जाते हैं, वो कौन सा बंधन है? हमारा एक दिन आता है ना, कौन सा है? थोड़ा बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं। कौन सा त्योहार है हमारा? रक्षाबंधन। तो एक बंधन बांधने से अन्य बंधनों से छूट जाते हैं, तो उसको बंधन कहेंगे या बंधन मुक्त करने वाला कहेंगे? इसी तरह से अब सोच चिंतन की बजाय हमें क्या करना है, सोच चिंता। अच्छा, क्या हम करते हैं? किसी को ये पता है कि मेरा टाइम कभी भी पूरा हो सकता है, संगम युग, कई तो संगम युग गिनते हैं, बड़े रॉयल ढंग से पूछते हैं कि जी हमें तो पूरा निश्चय है परिवर्तन होने वाला है, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं ना, उनको क्या बताएं कितना टाइम बचा है। इसको बाबा कहते हैं रॉयल क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना है लेकिन दूसरे का नाम लेकर पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कि हम सचमुच दो शब्द हैं, एक है चाहिए और एक है करना, एक है ज्ञान और एक है स्वरूप बनना। तो बाबा कहते हैं सोच चिंतन का ज्ञान तो है कि देखो स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं, मेरा टाइम कभी भी पूरा हो सकता है, और जितने हमारे पूर्वज थे जो पास विद ऑनर हुए उन्होंने टाइम से पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले मातेश्वरी जी ने कर लिया, अन्य हमारे आदि रत्नों ने कर लिया, ब्रह्मा बाबा ने भी 1969 में कर लिया। तो हम क्या ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब लास्ट घड़ी आ जाए स्टॉप राइटिंग कहें उस वक्त हमारा पेपर पूरा होगा, वो पास विद ऑनर नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि हमारा सोच चिंतन ये तो चलता है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें अमृत वेले को महत्व देना चाहिए, हमें सभी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, हमें इतनी आत्माओं को संदेश देना, इतनी आत्माओं को संदेश देना है, देना तो चाहिए, नहीं तो कैसे कार्य पूरा होगा, हम जा ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा को भी हमने रोक रखा है, वो भी हमारे स्नेह में गेट नहीं खोल रहे हैं। फिर दुनिया में दुख डे बाय डे बढ़ रहा है, प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है, तो हमें उनकी दुख अशांति को भी खत्म करना है। लोग कहने लग गए हैं आजकल, आपको पता है जरा सी बात में लोग जीव घात कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, किसान सुइसाइड कर रहे हैं, किसी को तंग किया जा रहा है, आजकल सुइसाइड बहुत हो गई है, इतना दुख है। तो उस दुख के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर हम कार्य पूरा नहीं करेंगे तो दुनिया और लंबी होगी, कलयुग और दुख दाएगा, सब हमको है। तो हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सोच चिंतन तो चलता, लेकिन चिंता का रूप हो जाए और हम उसके स्वरूप बन जाए कि आखिर हमें करना क्या है, वो नहीं करते। तो इसलिए बाबा कहता है उसमें क्या वजह है, मोटी वजह क्या है, क्या कारण है कि हम अलबेले हो जाते हैं, यानी निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा कहता है कि निश्चित निश्चिंत है, जिसको बाबा पर पूरा निश्चय है उसको कोई चिंता नहीं है, और वो हर बात में निश्चिंत है। मुरली में ड्रामा पर आज भी था कि जो ड्रामा को पक्की तरह खड़ा वो निश्चिंत है, कोई बात नहीं, नहीं ये हुआ था। लेकिन हम चिंता अंदर रहते हुए भी निश्चिंत हो जाते हैं, इसको कहा जाता है अलबेलापन। ये पता है लेकिन गफलत कर रहे हैं, तो इसको बाबा कहता है ये बहुत खतरनाक है। अब अलबेलेपन का क्या कारण होता, सोचने की बात है। अलबेलेपन का एक ही कारण है कि हमें समय की सावधानी भूल जाती है। आप देख लो, बाबा ने हमको बताया हुआ है कि समय थोड़ा है, ना सिर्फ थोड़ा है, अब थोड़े से थोड़ा है, जिसको बाबा की मुरलियों में क्या शब्द आते हैं, बाबा के क्या शब्द हैं, बहुत गई, अब तो याद आ गया होगा आपको, बहुत गई थोड़ी रही, और उसके आगे क्या है, थोड़ी की भी थोड़ी रही, और ये तो हुआ टोटल टाइम, मेरा टाइम कितना है। कोई ये बता सकता है कि मेरे लिए संगम का कितना टाइम बचा अपने लिए, नहीं। और हम रोज देख रहे हैं समाचार आ जाता है आज फलाना महारथी यहां से चला गया, तो हम भी जा सकते हैं। हम लोग रोज जब अखबार देखते हैं तो उसमें एक पूरा पेज होता है جس میں بڑے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس نے شریر چھوڑ دیا, اس کا 14 فلانے دن ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں؟ یا کبھی کسی کو شمشان گھاٹ چھوڑنے چلے جاؤ تو کیا سوچتے ہیں؟ اپنا سوچتے ہیں, ارے کیا رکھا ہے دنیا میں, ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہونا ہے ایک دن, ہے نا. کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں ہے دنیا میں, کیا لے گیا بیچارا ساتھ. اور آدھے گھنٹے بعد یہ سوچنے لگ جاتے ہیں, دیکھو تو صحیح بیچارا کیا چھوڑ گیا ہمارے لیے. اچھا, تو اس کو بابا کہتا ہے محسانی وراج, یعنی ٹیمپرری. تو اس لیے سمے کی ساودھانی کو اگنور کرنا ہی ہمارے اس البیلے پن کا کارن ہے کہ ہماری سوچ چنتن پوسٹ پون ہو جاتا ہے, بیچ بیچ میں ہوتا ہے, پھر غائب ہو جاتا ہے. اب آپ بتاؤ, کیا سچ مچ سنگم یوگ کا ٹائم تھوڑا سا ہی نہیں رہ گیا؟ جب کوئی سوچتا ہے کتنی دادیاں رہ گئیں, اب کیا ہوگا, کوشچن آتا ہے, اس وقت یہ نہیں خیال آتا کہ سنگم ہمارا کیا ہوگا؟ تب بابا کہتا ہے آپ کو انیک چنہ دکھائی دے رہے ہیں. دنیا کی حالت دیکھ لو, ایکسیڈنٹس دیکھ لو, بیٹ بنا مطلب خون ناحق دیکھ لو, کسی ویکتی کو جاتے جاتے کچھ کسی کے سریا لگ جاتا ہے, کسی کے اوپر کچھ گر جاتا ہے, روز ہم دیکھ رہے ہیں. اور ساری اتنی ظلم, اتنا انیائے, اتنا ادھرم, اتنا انرتھ ہو رہا ہے کہ ویکتی دیکھ دیکھ کے بھی جیسے کہ دکھی ہو جاتا. تو ایسی پرستھتی میں بابا کہتا ہے تم کو آگے کا بھی سوچنا ہے. تھوڑے ٹائم کے بعد ہم کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملے گا, یہ بھی پکی بات ہے. ذرا سی پرتکشتا شروع ہوگی تو نہ تو اس طرح کے ہم سماگم کر سکیں گے, نہ ہم اکٹھے ہو سکیں گے, اپنے لیے بھی ہمیں ٹائم نہیں ملے گا. جب جنتا آ کر کے بھیڑ آپ کے پاس اکٹھی ہوگی کہ ارے تم کو بابا کا پریچے ہمیں تھوڑا سا دو, آپ اس کو انچلی دیں گے. صرف بابا کہتا انچلی بھی مشکل ہے کئیوں کو, تو صرف اپنی درشتی سے ہی آپ میسج دیں گے, اس کو مکتی مل جائے, اس کو جیون مکتی مل جائے. آپ کو بھوجن کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا, سونے کا ٹائم نہیں ملے گا. بابا کی ایک اویکت وانی ہے جس میں بابا نے کہا ہے کہ جیسے لنگر لگتا ہے نا, تو لنگر میں بہت سارا سٹاک رکھتے ہیں کہ آتے جاؤ لیتے جاؤ, کوئی بھوکا نہ جائے. تو آپ کو روٹیوں کا لنگر نہیں لگانا ہے, لیکن جو منوش آتماؤں کو اس سمے چاہیے, کسی کو شانتی چاہیے, کسی کو سنتوش چاہیے, کسی کو دھیریہ چاہیے, اس کا ہمارے پاس سٹاک ہونا چاہیے. تو اس وقت آپ کو جب لنگر میں دیں گے تو آپ کو سونے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا, یہ بابا کی مرلی ہے. پھر بابا کہتے کیا ہوگا, آپ کو سونے کا ٹائم نہیں ملے گا تو شریر تھکے گا نہیں. تو بابا کہتے ہر چیز کی سٹیج ہے. اب مان لو برہما بابا اویکت ہو گئے, تو برہما بابا کو اویکت لوک میں تھکاوٹ ہوتی ہے, نیند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں. تو بابا کہتے ہیں اگر آپ سوچ چنتن کر کے جو ہمیں پریزنٹ سٹیج رکھنی چاہیے اس پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو نئے نئے طریقے ملیں گے. تو کیول 3-4 منٹ اگر ہم پورے اشریری بن کے, کرماتیت بن کے, ودیہی بن کے اویکت استھتی میں پہنچ جاتے ہیں, تو 3-4 منٹ میں آپ اتنے ریفریش ہو جائیں گے آپ کو لگے گا میں نے 4 گھنٹے کی نیند کر لی. کیا منظور ہے؟ جیسے کوئی ویکتی نارمل ٹریول کرتا ہے اور ہوائی جہاز سے ٹریول کرتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا, اڑتی کلا کا. तो बाबा कहते हैं आप सूक्ष्म वतन का अभ्यास करो, आपको बहुत मजा आएगा। मान लो किसी को डायबिटीज की बीमारी है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर है, आप सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, वहां आपको ये बीमारी रहेगी? क्या ख्याल है? या किसी को मीठा खाना बंद है, आप सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, आप सारी मिठाइयां खा सकते हो, कोई असर नहीं। तो बाबा कहते ये अच्छा है या ये अच्छा है? इसलिए अब हमको क्या करना है कि फरिश्ता रूप, और सेवा भी बाबा कहता है हमारी अब ऐसे ही होनी है। आप बोलकर किसी को कोर्स कराओ, किसी को क्लास कराओ, वो समय नहीं है। अभी भी आप देखते हैं घटता जा रहा है, तो क्या होगा और आप बचेंगे कैसे? जब दुनिया देखेगी लूट मार करने आएगी, लोग किसी की इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे, किसी का पैसा लूटने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अनाज रखा है, हम भूखे हैं, चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से अनाज ही चोरी करके ले आओ, तो कैसे बचेंगे? तो बाबा कहता मेरा आप ये नहीं घबराओ नहीं कि क्या होगा। बाबा ने जो हमें गारंटी दे रखी है क्या कि अंत में भी मैं आपको रबड़ी मलाई तो नहीं खिलाऊंगा, लेकिन दाल रोटी हर बच्चे को मिलेगी। ये कोई कम गारंटी है? और बाबा कहते ये क्यों नहीं याद करते कि बिल्ली के बच्चे भट्टे में बच गए थे, प्रहलाद गरम तपते हुए पिलर से बच गया था, हम वो हैं। तो बजाय अपने आप को साधारण गिन करके उस रूप को अब हमें लेना है। ऐसे नहीं, अगर इस रूप में होंगे तो फंस जाएंगे। इस रूप में तो आपको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा, मिठाई से भी ना करनी पड़ेगी, वो कहेंगे खाओ हलवा, नहीं सॉरी, हलवे में नुक्स है या मेरे में नुक्स है? अच्छा, इसलिए बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा को अगर आप अभी देखना चाहें, मिलना चाहें, तो किस रूप में है इस वक्त ब्रह्मा बाबा? किस रूप में है? ये तो मोटा रूप है। जो चित्र आप ब्रह्मा बाबा का देख रहे हैं इस रूप में है या इससे बहुत रिफाइन, बहुत रिफाइन, बहुत रिफाइन लाइट के रूप में है? तो बाबा कहता है जैसे सूर्य की रोशनी होती है, जब खूब धूप निकल आती है तो चारों तरफ रोशनी आपको महसूस होती है, गर्मी लगती है। आप धूप में एक मिनट खड़े हो जाए तो आपको महसूस होता है, आप सूर्य की तरफ देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप सुबह के समय जब सूर्य निकलता है सूर्य को देखो तो क्या दिखाई देता है कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, उसकी किरणें हैं जो बढ़ रही हैं, पर अंदर एक सूर्य है वो आपको दिख रहा है लाइट का। इसी प्रकार से अगर हम ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त वतन में देखते हैं तो अव्यक्त वतन पहले तो है ही लाइट का, वहां आवाज तो है ही नहीं, फिर उसमें बहुत प्रकाशमय रूप के अंदर ब्रह्मा बाबा प्रकाशमय दिखते हैं। अच्छा, अब उनसे मुलाकात करने के लिए हमें भी वही रूप धारण करना है, जैसा देश वैसा वेश। तो हम भी अपने आप को केवल उस वक्त नहीं कि हम अब बाबा को अव्यक्त रूप में याद कर रहे हैं, अव्यक्त वतन है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, ये है फर्स्ट स्टेज। लेकिन हम यहां जैसे ब्रह्मा बाबा ने यहां अपने लास्ट दिनों में हम लोग देखते थे, वही ब्रह्मा बाबा जो बच्चों से साकार रूप में मिलते थे, सैर करवाने ले जाते थे, उंगली पकड़ते थे, गीत गाते थे, वही ब्रह्मा बाबा जैसे यहां बैठे हैं पर डिटैच हैं, उनसे बात कर रहे हैं तो ऐसे लगता था ब्रह्मा बाबा कहीं और हैं। फिर वो बात थोड़ी सी करते थे, सामने लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहते थे। तो बाबा कहते हैं हूबहू हमको वही रूप ब्रह्मा के बच्चों को धारण करना है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक अजीब तरह का रूहानी नशा रखना है, और वो नशा दो प्रकार का है, एक पीठ का और एक मुख का, कि हमें पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी चीजों से विस्मृति हो जाए। कई बड़े खुश होते हैं, सुनाते हैं, मेरे से पूछते हैं, जब आप लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या था। अब ये पुरानी दुनिया की चीज है ना। अच्छा, तो आज की बात करो। इसलिए बाबा कहते आपको भी खुश नहीं होना कि मुझे अपने कलयुग के बचपन की बातें याद हैं। उसको भूलने के लिए बाबा ने कहा क्या है, सुदर्शन चक्कर घुमाओ, कि मेरा सिर्फ ये जन्म नहीं है, इसी की पिछली हिस्ट्री मुझे याद नहीं करनी है, इसको बल्कि भूलना है और अपने सारे 84 जन्मों को सामने लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे घड़ी की सुई होती है, इस वक्त मेरी सुई कहाँ है, तो मेरी सुई है संगम के अंत पर, और मुझे जो मेरा पीठ है वो टोटल भूला हुआ होना चाहिए और जो मेरा आगे है वो टोटल मुझे याद होना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछे परसों शाम को आपने क्या भोजन खाया था, क्या सब्जी खाई थी, आपको याद है? नहीं। लेकिन कोई मोटी बात किसी को याद हो कि परसों शाम को मुझे दूध नहीं मिला था, खत्म हो गया था, वो तो याद रहेगा ना। इसी प्रकार से व्यक्ति को जीवन की मोटी मोटी बातें, खास तौर पर दुख की याद रहती है कलयुग में, सुख की भी याद करो तो रहती है। तो हमें ये सब भूलना है, इसलिए बाबा कहते हैं एक तो हमें पीठ करनी है अर्थात पिछली बातों को भूलना है, और उनके आधार से जो हम प्रेजेंट काम करते हैं उसको भी न्यारे होके करना है, जिसको बाबा कहता है कर्मातीत होके करना है, ना सुख में ना दुख में। हमारी अपनी विशेषता में, अपनी खुशी की बात में भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी आपको बांध लेगी। जिसको बाबा कहते हैं सोने की जंजीर, बहुत बारीक बारीक, बड़ी सुंदर, लेकिन है जंजीर। जैसे आप भैंस को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं ना, तो कई लोग लंबी रस्सी बांध देते हैं ताकि वह थोड़ा सा घूमती फिरती रहे, टाइट ना रहे। तो बाबा कहते हैं लंबी रस्सी का भी ध्यान रखना है कि हम तो जी निर्बंधन है, हम तो मुक्त हैं, हमें तो कोई बंधन नहीं, क्योंकि लंबी रस्सी है। लेकिन जब कोई कहे आप चलो तो वो यहां आके अटक जाएगी। इसलिए कर्मातीत होने का खुशी, ये मेरे कर्म बंधन खत्म है, मैं कार्य कर रहा हूं लेकिन निमित्त कर रहा हूं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा के पास भविष्य स्पष्ट दिखने लग गया था, जैसे किसी व्यक्ति को जब उसकी डेस्टिनेशन आती है उसको आभास होने लग जाता कि मेरी मंजिल आ गई। जैसे मान लीजिए मैं ORC में रहता हूँ बहुत काल, फिर भी जब मैं दिल्ली में जाता हूँ पांडव भवन में, तो जो ही उसकी समीपता आती है तो मुझे दिखता है ये दुकान है, ये गार्डन है, आभास होता है कि पांडव भवन आ रहा है, नेचुरल है। या कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है दिल्ली से माउंट आबू, तो आबू रोड आने से पहले उसको आभास हो जाता है, समान समूल बांध लेता है। इसी प्रकार से अब हमें खुद लाना चाहिए, अगर नहीं भी आता, अपना भविष्य का देवताई चोला, अपना ड्रेस, चमकीला ड्रेस सामने आना चाहिए। पहले आप उसको सामने लाएं, भूले तो फिर लाएं, चारों तरफ हमारे घूमना चाहिए। हमें सोते समय भी वो ड्रेस याद आनी चाहिए कि मैं सो रहा हूं, सुबह मुझे ये मिलेगी। तब बाबा कहता है जब किसी का मंजिल नजदीक होती है तो उसकी स्पीड आप तेज हो जाती है। तो हमें अपनी स्पीड को तेज करना है। दो ही तरीके हैं, पीछे की बात याद ना आए, आए भी तो उसको भुला दो, प्रेजेंट की बात में हम कर्मातीत रहें, अर्थात करें जैसे न्यारा होके करता है। जैसे किसी को जाना है, अब आप यहां आते हैं, आप चीजें यूज करने की रखते हैं, एक हफ्ता आपको रहना तो अच्छी तरह रखते हैं। जिस दिन आपके जाने का दिन होता है, कोई कह जी ये चीज ले लो, आप कहेंगे मैं तो जा रहा हूं, मेरी भी ले जा। इसी प्रकार से ये हमको स्टेज रखनी है, क्योंकि रखेंगे तो बनेगा। बाबा कहते हैं फॉर्म बनाएंगे तो फिर आपका रूप बन जाएगा, और अपना भविष्य चोला सामने रखना तो उसका खुशी रहेगी, इसको उधार चुकतू करने की खुशी, कमाई के आने की खुशी, तो ये दो खुशियां और नशे में रहेंगे आपका ये संगम युग आसानी से बीत जाएगा। ओम शांति। अब हम 5 मिनट के लिए अपने तीनों रूपों का, अपने तीनों लोकों का या तीनों कमरों का सैर करते हैं कि मैं साकार रूप में संगमवासी हूं और संगम युग का वरदान है कि असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आप इस वक्त भी प्रैक्टिकल पक्का दृढ़ निश्चय करें कि मैं 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाऊं, दृढ़ निश्चय करें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। ताली बजाएं जैसे राजा लोग, नहीं नहीं ये ताली नहीं, जैसे राजा लोग ताली बजाते थे तो जो जो चाहिए था वो अपीयर हो जाता था ना, उनका दास दासी अपीयर हो जाता था या किसी ने कोई काम करना है, तो ताली बजाएं और आप मन की ताली बजाएं तो आप सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएं, ताली बजाएं परम धाम में पहुंच जाएं, ताली बजाएं नीचे आ जाएं। आप भले ताली बजाइए। परंतु अब हम मन की ताली बजा के पहले अपने निराकार स्वरूप को याद करेंगे, फिर हम अपने संगम युग के स्वरूप को याद करेंगे कि हम चरती कला वाले फरिश्ते हैं, फिर हम अपने सूक्ष्म टोटल फरिश्ता रूप लाइट के स्वरूप में अपने को देखेंगे, बाबा को देखेंगे, और लास्ट हम अपने सतयुगी देवताई स्वरूप को याद करेंगे। तो 3 मिनट हैं, 3 मिनट में 4 स्वरूप। आप बैठिए।
हम यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश ने छाया, सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तलक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई, आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही।